Good afternoon to student of MSc class 2nd semester School of Studies in Microbiology. Today we are going to discuss about delayed type hypersensitivity, or it also called as type 4 hypersensitivity reaction. So I have gave you all the PPTs regarding the immediate kind type hypersensitivity, which include type 1, 2 and 3 hypersensitivity reaction. Now in this audio lecture I will only clarify about delayed type hypersensitivity reaction. So as we know, immediate type hypersensitivity, it means its onset or its symptom occurred early in time, while in delayed type hypersensitivity reaction, the symptom of this kind of hypersensitivity reaction occur late in time. So that's why it is called a delayed type hypersensitivity reaction. So as we know that type 1 hypersensitivity is IgE, antibody mediated hypersensitivity, while type 2nd hypersensitivity is IgG mediated cytotoxic hypersensitivity, and type 3rd hypersensitivity is associated with immune complex mediated hypersensitivity. Now we will discuss about type 4 hypersensitivity. It means delayed type hypersensitivity reaction. So in delayed type hypersensitivity, when delayed type hypersensitivity is basically due to the reaction of T helper cell. This is the main thing about the delayed type hypersensitivity. So when small population or subpopulation of activated TH cell encountered certain kind of antigens, they secrete cytokines. As you know, already studied in cytokine section, that T helper cell secrete various kind of cytokines. So this cytokine induced localized inflammatory reaction, which is called delayed type hypersensitivity reaction. And this reaction is characterized by a large influx of non-specific inflammatory cells, in particularly macrophages. वहाँ जो inflammation की site होती है, वहाँ पे specifically जो macrophages हैं, और इसके अलावा जो other non-specific inflammatory cells हैं, उस inflammation की site पे ये आ जाती हैं। ये जो reaction है, सबसे पहले 1890 में discover की थी रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले 1890 में इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में बताया था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि ऐसे इंडिविजुअल जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो जब किसी कोई इंडिविजुअल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड होता है, तो उसके अंदर जब हम एक माइकोबैक्टीरियम कल्चर फिल्ट्रेट, माइकोबैक्टीरियम के कल्चर से मिला हुआ जो फिल्ट्रेट होता है, उसको जब हम इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर ये लोकलाइज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखाई देता है। इस टाइप का लोकलाइज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखाई देता है, उसे इन्होंने लोकलाइज स्किन रिएक्शन बोला, या फिर उसे इन्होंने एक टर्म और दिया था, उसे बोलते ट्यूबरकुलिन रिएक्शन। ट्यूबरकुलिन इसलिए बोला क्योंकि उसमें ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का जो एक्सट्रैक्ट है उसको लिया गया था। बाद में इस रिएक्शन को स्पेसिफिकली ट्यूबरकुलिन नाम ना देकर इसको डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी या टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी बोला गया, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ट्यूबरकुलिन एंटीजन या ट्यूबरकुलोसिस एंटीजन के अलावा दूसरे एंटीजन से भी इंड्यूस हो सकती है, इसलिए इसे कलेक्टिवली टर्म दिया गया डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं वो काफ़ी लेट नज़र आते हैं, और टिश्यू डैमेज के लिए ये हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। एक्चुअली जो डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है वो हमेशा ही डेट्रीमेंटल नहीं होती, हमेशा ही बहुत ज़्यादा लिथल नहीं होती। बहुत कम केसों में, कुछ केसों में ये जो DTH रिस्पॉन्स होता है वो एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि कुछ केसेस में, काफ़ी केसेस में ये जो इसका जो टिश्यू डैमेज होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, और ये इंट्रासेलुलर पैथोजेंस और जो एंटीजेंस आते हैं कॉन्टैक्ट में उनके अगेंस्ट डिफेंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम एक्सेसिव इवॉक हो रहा है, एक्सेसिव एक्साइटेड हो रहा है। तो इसमें ये नहीं है कि जो एंटीजन आया है वो किल नहीं होगा, बट ये है कि वो जो एंटीजन आ रहा है वो उसका हम इतना ज़्यादा एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि उसके एंटीजन के साथ साथ हमारे कुछ टिश्यू भी डैमेज होने लगते हैं। तो डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी एक मतलब गलत फिनोमिनन नहीं है, ये एक इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए फिनोमिनन है, बट ये अगर एक्सेसिव हो जाती है तो इट कैन बी मोर लेथल और डेंजरस। डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी में सबसे जो इम्पॉर्टेंट सेल्स जो होती है वो रोल प्ले करती है वो है मैक्रोफेजेस। ये जो मैक्रोफेजेस होती हैं जो सबसे पहले इन्फिल्ट्रेट होके इन्फ्लामेशन की साइट पे आती हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं हम फेजेस ऑफ DTH रिस्पॉन्स। DTH यानी डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स की डिफरेंट फेजेस होती हैं। इसमें इसकी फेज में जो सबसे पहली इनिशियल फेज होती है वो है सेंसिटाइजेशन फेज, यानी कि जब पहली बार कोई एंटीजन कांटेक्ट करता है तो उसे बोलते हैं सेंसिटाइजेशन फेज। ये होती है 1 से 2 वीक के तक, जब तक कि कोई पहली बार कोई एंटीजन कांटेक्ट करता है उसके 1 से 2 वीक बाद तक ये सेंसिटाइजेशन फेज होती है, यानी हमारे सेल्स को सेंसिटाइज होने में इतना टाइम लगता है। इस पीरियड में TH जो सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती है और एप्रोप्रिएट जो सेल है उस पे MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ जाके एप्रोप्रिएट एंटीजन प्रेजेंटेशन शो करती हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन्वॉल्व रहती हैं जो कि DTH रिस्पॉन्स शो करती हैं, जिसके अंदर लैंगरहैंस सेल्स और मैक्रोफेजिस मेन सेल्स हैं। लैंगरहैंस सेल्स ऐसी सेल्स डेंड्राइटिक सेल्स हैं जो कि एपिडर्मिस में होती है, मतलब लैंगरहैंस सेल्स हैं वो डेंड्राइटिक सेल का ही टाइप होती है जो एपिडर्मिस हमारी स्किन की लेयर में प्रेजेंट होती हैं। ये जो लैंगरहैंस सेल्स यानी डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो हमारी स्किन में होती है, तो स्किन के थ्रू जो एंटीजन एंट्री करता है वो उसको तुरंत पिकअप करती हैं और उसको रीजनल लिम्फ नोड में ये ट्रांसफर कर देती हैं, रीजनल लिम्फ नोड में ये ट्रांसपोर्ट करके लेके जाती हैं। ये वहाँ से जो सेल्स हैं रीजनल लिम्फ नोड में लेके जाती है जहाँ पर टी सेल्स होती हैं, और ये जो एंटीजन्स है टी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। कुछ स्पीशीज में जो जैसे कि ह्यूमन में कुछ स्पीशीज में वास्कुलर जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो भी क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं, तो ये भी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह DTH रिस्पॉन्स में काम करता है। सेंसिटाइजेशन फेज में जो टी सेल एक्टिवेटेड होती हैं वो मेनली जो होती हैं CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होती हैं जो कि TH1 का सब टाइप है, बट कुछ केसेस में CD8 पॉजिटिव सेल्स भी DTH रिस्पॉन्स शो कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो टी सेल्स हैं जो DTH रिस्पॉन्स देती हैं उन्हें TDTH सेल्स एक टर्म दे दिया जाता है कि TDTH सेल्स हैं, ऐसी सेल्स जो DTH रिस्पॉन्स देने के लिए इवॉक हुई हैं। ये पूरी जो बात है वो है सेंसिटाइजेशन फेज की। इसके बाद जब सबसिक्वेंट एक्सपोजर होता है सेम एंटीजन का तो ये दूसरी फेज इनिशिएट करता है जिसे हम बोलते हैं इफेक्टर फेज ऑफ DTH रिस्पॉन्स। और इस इफेक्टर फेज में जो TH1 सेल हैं वो डिफरेंट काइंड के या डिफरेंट वैरायटीज के साइटोकाइन रिलीज करती हैं जो कि मैक्रोफेजेस और जो अदर नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं उनको रिक्रूट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। तो इस सारी प्रोसीजर के लिए इसलिए बोलते हैं कि DTH में ज़्यादा ज़्यादा जो रिस्पॉन्स है वो सिम्टम जो होता है उसका लेट आता है, क्योंकि एटलीस्ट जो इनिशियल फेज है वो 24 आवर्स में होगी, उसके बाद सेकेंड कॉन्टैक्ट होने में एंटीजन का 48 से 72 घंटे के आसपास टाइम लगेगा, तो इसलिए जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी लेट होते हैं। तो जब डीटीएच रिस्पांस होता है तो टीएससेल एक्टिवेट होती हैं, वो साइटोकाइन रिलीज करती हैं। अभी जो साइटोकाइन रिलीज हो रहे हैं ये इंड्यूस करते हैं ब्लड मोनोसाइट्स को, वो जाके जो ब्लड मोनोसाइट्स हैं वास्कुलर एंडोथीलियल सेल्स पर जाके एडियर हो जाती हैं। और ये ब्लड मोनोसाइट जो आती कहाँ से हैं, ये ब्लड से ट्रैवल करके आती हैं, जो भी सराउंडिंग टिश्यू होते हैं जहाँ पर भी ये एंटीजन होता है उसकी जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वहाँ से ये जो मोनोसाइट्स हैं ट्रैवल करके आती हैं और वास्कुलर एंडोथेलियल सेल में जाके ये एडियर हो जाती हैं। उसके बाद इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो मोनोसाइट्स है डिफ्रेंशिएट होती है एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस में, क्योंकि जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो उनमें ज़्यादा फैगोसाइटिक पावर अच्छी होती हैं और माइक्रोऑर्गेनिज्म किल करने के लिए ये ज़्यादा कैपेबल होती हैं। और इसके अलावा ये बहुत सारे साइटोटॉक्सिक मीडिएटर्स रिलीज करती हैं। उसके अलावा ये जो मैक्रोफेजेस हैं एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, ये क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल सेल एडिशन मॉलिक्यूल को ज़्यादा एक्सप्रेस करती हैं, इनका लेवल इसमें इंक्रीज एक्सप्रेस होता है, इसलिए ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह ज़्यादा एक्ट करती हैं और एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं। तो ये जो डीटीएच रिस्पॉन्स में जो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो रही हैं ये जो प्राइमरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पैरासिटिक ऑर्गेनिज और इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया जो कि सेल के अंदर रहते हैं उन पे ये ज़्यादातर एक्शन करता है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों पे जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली एक्ट नहीं कर पाती क्योंकि ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, इसलिए जो डीटीएच रिस्पॉन्सिबल है मेनली इन कंडीशंस में क्रिएट होता है। और ये जो इस तरीके से जब जो फैगोसाइटिक सेल्स की जो एक्टिविटी हाई होती है उसमें बहुत सारे लाइटिक एंजाइम्स बनते हैं, तो वो ये जो लाइटिक एंजाइम्स हैं ये वहाँ पे जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे सेल्स का नॉन स्पेसिफिक डिस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब जो इंट्रासेलुलर पैथोजन है उसको तो किल करते ही करते हैं और उसके आसपास की जो सेल्स है क्योंकि उनकी जो एक्टिविटी है वो हाईली इंक्रीज है तो वो हमारे खुद की सेल टिश्यूज का भी डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं। और इस तरीके से हमारे थोड़े से टिश्यू के डैमेज होने के साथ साथ वो जो पैथोजन भी है काफ़ी जल्दी काफ़ी रैपिडली और क्लियरली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कभी किसी केस में ऐसा होता है कुछ केसेस में कि जो एंटीजन है वो बहुत ही इजीली क्लियर नहीं हो पाता, इसके लिए जो डीटीएच जो रिस्पॉन्स है वो एक प्रोलॉन्ग टाइम तक बना रहता है और ये प्रोलॉन्ग टाइम तक डीटीएच का होना हमारे सेल्फ टिश्यूज को डिस्ट्रक्शन के लिए वॉक करता है और हमारे सेल्फ टिश्यू काफ़ी लंबे टाइम तक डिस्ट्रक्ट होते रहते हैं। उस टाइम पे थोड़ा सा एक पैथोजेनिक सॉरी एक लिथल कैरेक्टर शो करता है, एक डेंजरस कैरेक्टर शो करता है और यहाँ पे एक विजिबल ग्रेनुलोमैटस रिएक्शंस दिखाई देती है। ये जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है इसमें एक विजिबल ग्रेनुलोमैटस रिएक्शंस दिखाई देती है, यानी कि वहाँ पे कंटिन्यूस मैक्रोफेजेस के एक्टिवेशन के कारण ग्रेनुलोमा डेवलप हो जाता है। क्योंकि मैक्रोफेजेस इतनी ज़्यादा एक्टिवेटेड होती हैं कि वो एक दूसरे से क्लोजली अटैच होती चली जाती हैं और इपिथेलियल शेप बना लेती हैं और फ्यूज होके ये मल्टी न्यूक्लियेटेड जाइंट सेल बना लेती हैं, ग्रेनुलोमा डेवलप कर लेती हैं। और ये जो जाइंट सेल हैं ये नॉर्मल टिश्यू से जो जाइंट सेल हैं ये डिस्प्लेस होके पल्पेबल नोड्यूल्स बनाती हैं जो हाई कंसंट्रेशन के लाइटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं और जो कि सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज करते हैं। इस केस में जो ये जो जो रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, डैमेजिंग रिस्पॉन्स जो क्रिएट हो रहा है वो ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करता है और वो वैस्कुलर एंडोथेलियम की नेक्रोसिस क्रिएट करता है। ये जो जो ट्यूबरक्लोसिस जब होता है तो हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं, लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो ट्यूबकल्स बनते हैं ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के माइकोबैक्टीरियम के वो ट्यूबकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होती हैं और वहाँ पे जब वो उसको डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं ट्यूबकल को तो वहाँ पे आसपास के जो लंग टिश्यू है साइमल्टेनियसली वो उस लंग टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय करती हैं जिसके कारण लंग्स डैमेज होता है इसमें, क्योंकि इसमें डीटीएच रिस्पॉन्स शो होता है। बात आती है कि कौन कौन से साइटोकाइंस हैं, तो ये मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब TSCL एक्टिवेट होती है तो वो एक बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज करती हैं जो कि मैक्रोफेज को इन्फेक्शन की साइट पर अट्रैक्ट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इंटरल्यूकिन 3, IL-3 और GM-CSF है, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो कि लोकलाइज हीमेटोपोइसिस को इंड्यूस करते हैं, जिससे कि ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट जो है वो इंड्यूस जो सेल लीनिएज की जो सेल्स है वो इंड्यूस होती हैं और इन सेल्स का प्रोलिफरेशन करवाती है। इसके अलावा इंटरफेरॉन गामा और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF-beta और TNF-alpha और इंटरल्यूकिन 1 भी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ है कि हाउ कैन वी डिटेक्टेड DTH रिएक्शन। तो DTH रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा स्किन टेस्ट होता है, जिससे कि पता चलता है उसके अंदर डिलेट टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी एंटीजन का फिल्ट्रेट होता है, जैसे मैंने ट्यूबरक्लोसिस का बताया, ट्यूबरकल बैक्टीरिया का फिल्ट्रेट लेते हैं हम, और उसमें हम क्या करते हैं इंट्राडर्मली उसको इंजेक्ट कर देते हैं, एंटीजन को इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर देते हैं किसी भी एनिमल में, और उसे ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लेजन उस जगह पे डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। कभी आपने अगर करवाया हो तो ये हथेली पे, सॉरी ये जो आर्म है हमारा, जो हैंड है वहाँ पे हम ये यहाँ पे ऐसे गोला लगा के स्केच से वहाँ पे उस साइड पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और फिर 48 आवर बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर रेडनेस है, स्वेलिंग है या नहीं है। तो वो एक DTH टेस्ट के DTH टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जब ये पॉजिटिव स्किन रिएक्शन होता है तो ये वो इंडिकेट करता है कि उसके अंदर स्पेसिफिक टेस्ट एंटीजन जो भी आपने इंट्रोड्यूस करवाया है उसके लिए सेंसिटाइज TSCL है या नहीं है। ठीक है, अब जो हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के केस में डालते हैं वो हम डालते हैं PPD, जो प्यूरिफाइड प्रोटीन होता है माइकोबैक्टीरियम का, वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसे हम सेल वॉल से बनाते हैं माइक्रोबैक्टीरियम की, उसे हम इंट्राडर्मली इंजेक्ट कराते हैं और देखते हैं कि उस जगह पे 48 से 72 आवर के बाद क्या कोई रेड स्लाइटली स्वेलन एक नोट टाइप की एक लीजन टाइप का डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। अगर स्किन लीजन डेवलप हुआ है तो इसका मतलब है वो जो वहाँ पे जो इंटेंस फिल्ट्रेशन हुआ है, DTH रिएक्शन हुई है और वहाँ पे मैक्रोफेजेस फिल्ट्रेट होके आई हुई हैं, ताकि उन्होंने वो रिस्पांस दिया है, यानी कि DTH रिस्पांस हुआ है या नहीं हुआ है। बस इसमें एक ये रहता है कि देखिए सेंसिटाइजेशन कब होता है, जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये इन केस ऑफ वैक्सीन के केस में भी हो सकती है ना। किसी को वैक्सीन अगर हमने लगाया ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, तो कई जगह पे ये वैक्सीन के अगेंस्ट, क्योंकि वैक्सीन भी एक उसके अंदर एंटीजन है, उससे भी TSCLs एक्टिवेटेड हो रही हैं, सेंसिटाइज हो रही हैं, तो ये कभी कभी वैक्सीन के केसेस में भी पॉजिटिव शो करता है। इसके अलावा जो DTH रिस्पॉन्स है वो एक टाइप का और होता है, उसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, मतलब डर्मिस, हमारी स्किन पे कॉन्टेक्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को स्किन रिएक्शंस हो जाती हैं, एलर्जी होती हैं, लाइक कि वो अगर कोई कॉपर, कोई मेटल का, कोई निकिल अगर उनको बॉडी पर टच करे, किसी को गोल्ड से भी होती है, किसी को वो कोई गोल्ड के ये जो बैंगल्स वगैरह हैं ये नहीं कैरी कर सकता, किसी को टर्पिन से होती है, फॉर्मेल्डिहाइड कॉस्मेटिक से होती है, हेयर डाइज, पॉइजन ओक, तो इन सारी चीज़ों से डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। यानी ऐसी जो चीज़ें हैं हमारे डर्मिस पे कॉन्टैक्ट आते ही हमारी जो सेल्स हैं वो एक्टिवेटेड हो जाती हैं TSCL, और ये डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करती हैं। हालांकि ये जो सारे जो मैंने आपको बताए हैं फॉर्मल्डिहाइड, टर्पेंटाइन, ये सब बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सिर्फ अकेले हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं होते, पर जब ये हमारी स्किन प्रोटीन के साथ कॉन्टैक्ट, डर्मेटाइटिस हम इसीलिए बोलते हैं, जब ये हमारी स्किन प्रोटीन के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो खुद के लिए खुद इतना कैपेबल होता है कि वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कर दे। ये वहाँ पे जो लैंगरहैंस सेल्स है वहीं पे उसको एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करके और वो पूरा जितना पहले बताया था उस तरीके से पूरा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का प्रोसीजर फॉलो करती है और रिएक्शन शो करती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।